उनका मुखमंडल कैसा है उसको वर्णन कर रहे हैं। सस्मित मुखम सदयावलोकयि, संलग्न है यहाँ पर मुरली और दैनिक संबंधी मधुरिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता। जब उसमें मुरली रखते हैं और कटा सुभा करके दूसरी तरफ में देखते हैं सदय पूर्वक अत्यंत मधुर हो और उसमें सुंदर दैनिक ध्वनि मधुर निकल रही हो, वो अवर्णनीय है, हम नहीं वर्णन कर सकते। क्यों नहीं वर्णन कर सकते? कभी सुनाई नहीं, आप सुन कौन रही है? जो सुनने वाली है तो है नहीं, हम तो अनुमान कर रहे हैं, हम वर्णन कैसे करें? तथापि दया के सहित में सतत कृपा दृष्टि पूर्वक शुभमान नैन जुगल किसत हास्य जुगकर मुखमंडल एक कणिका ही अखिल विश्व ब्रह्मांड को आनंद से भर देती है। हम लोगों के लिए ये संभव नहीं है। यहाँ पर कृपा और स्मित दो चीजें, सस्मित मुखम सदयावलोकम, विशेषण के द्वारा कृष्ण के मुखमंडल की अत्यंत अपूर्व माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, जो ब्रज के बाहर में कहीं नहीं होगा, मथुरा इत्यादि में संभव नहीं है। इसलिए यह ऐसा करने किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण क्रोधा देश नहीं आए और उनको ये देख रहे हैं, और इसके ठीक विपरीत ब्रजवाला भाव सहास्य करुणा पूर्वक देख रहे, मृदुहास्य सदयावलोकन अदृश्य हेतु यहाँ पर ये बस कर रहे हैं। पुरस्तियां थोक पर कर रही है, परस्पर प्रेम से ये कह रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने कृष्ण के भाव को देख करके क्रोध से आरक्त हो रहे हैं और सोचा अब चारों को मारना चाहिए, एकदम वज्र के समान बन गए। इसलिए तदानीन सन जो कृष्ण का भाव है गंभीर हो गए, मुख पर जो पहले जो मंद मुस्कान थी वो समाप्त हो गई, मुख विवर्ण हो गया, आंखें आरक्त हो गई, कृपा और ये सब दूर हो गया, अब उसके बाद में निष्ठुरता है। चीजें करेंगे कहाँ हम लोगों का भाव और कहाँ गोपियों का, ठीक इसके विपरीत भाव। यद्यपि उनका मुख की बनावट ही ऐसा है कि उसमें सदयावलोकन और मंद मुस्कान सब समय रहती है, किंतु इसमें कुछ पुरोहित की है। इसे कहीं देखो अभी भी मंद मुस्कान है इस क्रोध के आवेश में भी, तो वहां पर कैसा होगा? इसलिए वो तुलना करके बतला रहे हैं। इसलिए गोपियों के दर्शन को वो परम दुर्लभ बतला रही है। इसलिए प्रतिवासी लोग परम धन्य है। अच्छा अब तो हुआ दिन में ये कृष्ण जा रहे हैं, प्रजात प्रजत और आदिशस्त सायन वहां से लौट रहे हैं। अब वो गोपियां विरह में मत हो रही है, ऐसे ही पड़ी हुई घर का काम कुछ नहीं कर रहे हैं, चेतनता नहीं है कृष्ण के विरह में। जब उन्होंने सुना गयों का हम बारह और आंखों से देखा धूल उड़ रही है किधर वन की तरफ में, और कृष्ण की मधुर मुरली कूद उठी, उस समय में उनके प्राण मानो लौट आए और झट उठ करके बैठ गई और खड़ी होकर के चल गई। उस समय भी स्वच्छंद से कृष्णचंद्र जी का दर्शन करते हैं और कराते हैं। प्रातःकाल भी वो छल बल से कुछ पहले से वहां पर कुछ खड़ी रहती है और कुछ बंसी की ध्वनि उनको निकाल कर सकता है। इस प्रकार से सायंकाल और प्रातःकाल कृष्ण को देखती हैं, उस समय देखने में उनको कैसा लगता है, अपने आंखों की पलकों की रहना ही उनको बुरा लगता है। और बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी अभी संपात करते हैं, ये ब्रह्मा योगी सृष्टि ने दिया कृष्ण का रूप इतना सुंदर और देखने के लिए ये केवल दो नयन और उस पर भी पलके लगा दी जो बार बार गिरती। आप दो मिनट एक मिनट आंख को ऐसा सीधा रखिए, क्या होगा, आंखें कैसी हो जाएंगी, वो अपने आप सूखने लग जाएंगी ना, ये सूखना सज्ज नहीं होगा, इसलिए पलके अपने आप गिरती रहे। इसलिए कहते हैं ये कब, अब गोपियां देख रही थी, अब तो नहीं लगे, नहीं पश्यंती, पश्यंती वर्तमान काल की क्रिया है, अभी भी देख रही इसका ये, अभी भी कृष्ण की ये लीलाएं वृंदावन में हो रही। कोई कोई सौभाग्यवान योग माया अपना बल हटा दे, अपना वो आच्छादन हटा देने पर उसको दर्शन कर, यहाँ पर मूल श्लोक में उस समय में गोपियां मिलन में भी विच्छेद उनको होता है, योग होता है, अभी कृष्ण वहां से चले गए विच्छेद उत्पन्न होता है, किंतु उसमें भी असाधारण महात्म का वर्णन वो कर रहे हैं। यहां पर ये कह रहे हैं जब इन्हीं लीलाओं में ये है उनका भाव, तो रास इत्यादि का तो हम वर्णन नहीं कर सकते, वहां पर क्या स्थिति है, आने और जाने के समय में ही गोपियों की यह दशा है, तो हम रास का हम वर्णन क्या कर सकते। इसलिए उन लीलाओं को लज्जा के मारे या रहस्य के कारण या अत्यंत अधिक महात्मा होने के कारण उन लीलाओं का स्पर्श नहीं करके यही पर उन्होंने इसको समाप्त किया। न पारे हम निरवद्ध संजुगं ससाधु कृत्यं विबुधाजुषा पिब मा भजन दुर्जर देह श्रृंखला संविश्य तदव प्रतिजाति साधुना। सनातन गोस्वामी पाद अब फिर दूसरे श्लोक में वो प्रसंग समाप्त कर, अब यह रात शनि में कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर गोपियों ने उनसे भगवल बुझाया, भगवल मैंने क्या
प्रहेलिका,
और उसमें कृष्ण उसका उत्तर देते हुए कि मैं इन नौ में से कोई एक नहीं, तीनों में से कोई एक नहीं, बुझाने के बाद में उनको बतला रहे न पा रहे हम मेरे बच्चे सही हो जाए, मैं किस लिए छिपा था, यदि कृष्ण कहते हैं कि प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसा ही लिखा है, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति को कोई धन मिल गया और उसको फिर वो हो दिया तो हाय हाय करने लगता है निर्धन व्यक्ति, हाय हाय कहाँ गया, उसी तरह से प्रेम की भिखारिणी जैसे गोपियां हैं भिक्षा लेने वाली, कृष्ण का दर्शन ही उनके लिए सर्वस्व है, तो वो गोपियां कृष्ण कह रहे हैं मानो कि मैं तुम्हारे इस प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं पहले तुम्हारे सामने आया, पीड़ा किया, उसके बाद में अंतर ध्यान हो गया तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो कृष्ण से गोपियाँ ये कहते हैं कि हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर में पहले तो प्रेम था नहीं, आपने बढ़ाने के लिए ऐसा किया, तो फिर आप ऋणी कैसे रहे, ऋण कैसे रहे बतलाइए। तो आपने पूरा का पूरा दे दिया। अजय नहीं, तुम लोग की ये महिमा जगत में घोषणा करने के लिए और जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए और नारद जी जैसे भक्तों के लिए उद्धव को दिखलाने के लिए कि ऐसे प्रेम का मैं ऋणी हूँ और किसी का प्रेम का ऋणी नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों का ऋणी हो गया, तुम लोग जीत गई मैं हार गई, इसका ऋण कभी भी नहीं चुका। इसी तरह से कृष्ण कह रहे हैं न पारे हम निरवध संजीवन, तुम्हारा हमारा मिलन अत्यंत निर्मल, कोई भी दाग नहीं, कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी काम नहीं है, कैसा है अत्यंत विमल निर्मल प्रसाद कृत्यम विबुधाजापिव स्वसाधु कृत्यम, मैं अपने क्रिया के द्वारा तुम्हारा मैं ऋण उतारना चाहूँगी, अपने साधु कृत्य के द्वारा जो तुम्हें अभीष्ट हो और उन क्रियाओं को करते हुए तुम्हें देवताओं की आयु लंबी पा करके भी जब ऋण चुकाने के लिए चेष्टा करूँ ये संभव कर दूँ। माँ भजन दूर खड़ा, तुम लोगों ने मांग भजन हमको प्रेम प्रीति करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए दुर्जर गृह श्रृंखलाओं को भी तुमने छोड़ दिया, देवियों को हथ कर दिया। घर की दुर्गम देवी श्रृंखला क्या है, लज्जा इत्यादि, पति को छोड़ देना, पति के प्रति प्रीति नहीं रखना, ये लोक मर्यादा वेद मर्यादा है, आर्य धर्म को विपरीत काम, गुरुजन जो निवारण कर रहे हैं मत जाओ, ये उचित नहीं है दूसरों से, पति को छोड़कर दूसरों से प्रीति करना, इस भेड़ी हस्तकड़ी को भी लज्जा की लज्जा रूपी आबाद समुद्र उसको भी लांग गई, इस सब को जितने भेड़ी हस्तकड़ी जो भी था सब के लिए सब छोड़ दिया। संवृत्य सदव प्रतिजात साधना, अब अपने साधु गुणों से साधु कृत्य तुम अपने ही कृत्य से, क्योंकि सुंदर मन वाली तुम लोग है साधु है, इसलिए यदि हमको ऋण कर दो ऋण तत्व तो है, अन्यथा मैं अपने कृत्य के द्वारा लाखों लाखों देवताओं की आयु पा करके भी तुम्हारे ऋण से उड़ी। प्रेम एक ऐसी चीज है, साधारण लौकिक प्रेम में भी ज्ञानी स्वार्थ होता है, जैसे यदि कोई यथार्थ में जीव गोस्वामी जैसा सेवक हो, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा सेवक हो, इससे हो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी स्वरूप दामोदर जैसे गुरु, तो ये लोग अपने गुरु का ऋण किसी भी समय में भी किसी चीज के द्वारा ये ऋण हो सकते हैं, किसी भी मूल्य में वो लोग नहीं, इसलिए वो सब समय क्यों पक्ष में उनका स्नेह नहीं है। साधारण उसमें गुरु का भी होता है, किंतु अंततम मध्यम में जो अधिकारी से ऊपर हो तब निस्वार्थ कुछ भावना आए, नहीं तो हमारे बहुत से शिष्य हों उसमें धनी मानी हों सुंदर हों उच्च कुल वाले हों और जितना भी शिष्य की संख्या होगी उनकी गरिमा अधिक देख लाए, नहीं हमारे इतने इसमें कुछ स्वार्थ है, कुछ कुछ थोड़े से भी कुछ वो लोग दे देंगे इनके लिए प्रसूद हो जाए, प्रशंसा भी अधिक होगी, और जिनको इसका भी नहीं है रूप गोस्वामी का किससे से कोई मतलब है, इससे वो जगत से ही के जगत के गुरु हैं। निस्वार्थ रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए, अपना बना लिया उनके ऊपर में कृपा की, अमृत भाव किया। ये देखा कि हमारा शिष्य नहीं है, ये देखा ये जदुनंदन आचार्य के शिष्य हैं, ये विचार किया। महाप्रभु जी ने हमारे हाथों में भी तो इनको नहीं सौंपा, ये विचार किया। किंतु कहा था कि यदि जाना हो तो वृंदावन में जाना, रूप सनातन को बड़ा सैया मानना, और इन्होंने उनको गुरु माना। और रूप सनातन जी ने इनको जो दिया उसी की उन्होंने विलाप को समांजलि और दूसरे दूसरे ग्रंथों में उन्होंने वर्णन किया। वैराग्य दुर्भक्ति रसम प्रयत्न बाण मानु मंदम कृतम बुधिर या पर दुख दुखी सनातनस्तम। वो पहला तो श्लोक भी आपको सुनांजलि का ही है, दूसरा भी श्लोक है फल कमले दुष्ट गर्भता कानून पणया से बरहस्य पुष्प गुच्छलेन अपनी निखिल लता सौरभता जन पति अवसव मार्गम कृष्ण भिंगू। यह कितने संदर्भ गुरु के प्रति ये पुष्पांजलि है। और रूप गोस्वामी जी देख करके मंद मंद वाह, आज हमको भी ये कृतार्थ कर दिया है हमारे। तो ये लोग ये समझेंगे साधारण अभी जगत में साधन के समय में भी, और जो इन चीजों को नहीं समझते हैं वो क्या करेंगे। जब तक गुरु जी कपड़ा और लत्ता और खाने को दे रहे हैं तब तक तक ठीक है, और शासन किया तो अंगूठा दिखला करके चले गए, नहीं समझ पाते। आज रस्ते को थोड़ा सा भी जिनको मिल गया है वो अपना कोटि कोटि जीवन भी उनके चरणों में न्योछावर करके समझने के लिए, यह गुरु की महिमा को समझना। तो न तो उसी के लिए ये कह रहे हैं इस प्रकार से न पा रहे हैं हम निर्वत दर्शन की जान। बहुत बार इसकी व्याख्या की है, अब कल हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या सुनेंगे। अब 7:30 बज गया है, बस यही कहते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी हजम करो नहीं तो बाजार हजम हो जाएगी गर्मी के बाद। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरस्थिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकाशयाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम्। चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, किस लिए संन्यास लिया, संन्यास का तात्पर्य क्या। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य संपूर्ण रूप से छोड़ देंगे, भौतिक सुखों को छोड़ देंगे, भौतिक सुखों के लिए लड़ाई झगड़ा विवाद कामना वासना सब छोड़ दे, यही तो संन्यास है। ये अभी संन्यास नहीं हुआ, संन्यास का ये बाहरी लक्षण है। जिन जीवनों के लिए संसार के लोग चाहते हैं अपने इंद्रिय सुखों को भोगों को चाहते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा इत्यादि होता है, तो इन चीज़ों को छोड़ दे, मन से भी छोड़ दे और उस मन को भगवान के चिंतन में कीर्तन में स्मरण में लगाए। तन मन और वचन तीनों को भगवत सेवा में अर्पित करें। भगवान के अतिरिक्त आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ ये संसार है दिखता है और उसे जो संबंध दिखते हैं वो सभी अनित्य हैं, नित्य नहीं है और दुखदायी है, इससे बचे ये सब। जहाँ तक मन का संबंध है शरीर की तो बात ही क्या, मन का भी जो संबंध है उसको भी छोड़ना है, इसलिए गीता ने ये कहा गया सर्वधर्मान शारीरिक मानसिक जो चीजें हैं इन सब को छोड़ करके आत्मा में प्रतिष्ठित हो। ये जगत की अनित्य है, इससे सुख की कल्पना करना आकाश कुसुम के समान मिथ्या है, ये कभी संभव पर नहीं है। इसलिए आत्मा को पहचानो और आत्मा से भी परम परमात्मा जो है जो उसके साक्षी स्वरूप हैं इस जगत के बनाने वाले भी वही हैं, उनको देखो। कैसे देखो, मान लें कि हरि नाम कर रहे हो तो देखो प्रभु साक्षी के रूप में हमारे साथ में है कि नहीं है, अणु में परमाणु में सर्वत्र ही प्रभु है, प्रभु ही प्रभु देख। ये देखना सत्य का अनुसंधान करना, तब बुरे चीजों में काम मन नहीं लगेगा और आत्मा की का रियलाइजेशन होगा, भगवान के प्रति परमा भक्ति होगी। इसको समझाने के लिए महाप्रभु जी ने संसार को छोड़ा, हरि कथाओं का सुनने का भी यही तात्पर्य। मानसिक धर्म सब को तो शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ करना है करो, किंतु बस वहीं तक, ये शरीर के लिए हम कर रहे हैं वो अभी शरीर ही तो समाप्त हो जाएगा। महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद में चले गए जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी से भी चले गए दक्षिण में गोदावरी के तट पर पहुंचे और वहां पर राय रामानंद नामक एक राजपुरुष से भेंट हुई। देखने में राजपुरुष विषयी भोगी गवर्नर तदानंतन, किंतु राज्य से शख्स में उदासीन कोई समझता नहीं था, काम सब ठीक राजा जनक की भांति कर रहे हैं, किंतु उनका अंतर कहाँ है इसको समझना बड़ा भारी कठिन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से जो कुछ जाना उसी को चैतन्य से चामृत में लिखा, अन्यथा इन महापुरुषों के विचारों को हम लोग जान नहीं सकते। जगत का इतना कल्याण किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जिसकी कोई तुलना नहीं। वहां पर राय रामानंद जी ने से उनकी भेंट हुई, भेंट होने के पश्चात में शाम को वो लोग मिले, शाम को मिले तो महाप्रभु जी ने उनसे प्रश्न किया साध्य और साधन क्या है, शास्त्रों के आधार पर बतलाई। क्यों कहा शास्त्र के आधार पर? हम जो कुछ कहते हैं मन के आधार पर, शरीर के आधार पर कुछ विचार करके कहते हैं, इसलिए वो ठीक नहीं होता। इसलिए आत्मा की अनुभूति पर ये चीजें यदि होंगी तो उसे जगत का कल्याण। इसलिए उन्होंने कहा कि शास्त्रों के आधार पर हमको बतलाइए। शास्त्र क्यों कहा? क्योंकि शास्त्र स्वयं भगवान से निकले। शास्त्र ज्योनि स्वात्, भगवान का मुख ये शास्त्रों की योनि है, उसी से सब शास्त्र निकले। अथवा शास्त्र ज्योनि स्वात्, शास्त्र ही है ज्योनि आधार, किसकी? भगवान की। शास्त्रों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि कृष्ण के मुख से अपने पाने के लिए जो उपाय बतलाए गए हैं उसी से भगवान को पाए, उसी से शांति जगत की होती। हम उसे भूले भटके हुए हैं। कुछ लोग ये संसार को सबसे समझ रहे हैं और इसमें आसक्त हैं। कुछ लोग संसार में देखते हैं कि आसक्त है, उसको छोड़ करके संसार से आसक्त हो रहे हैं, किंतु एक निर्विकार निराकार कुछ है नहीं, शून्य में चित्त को लगा उसी को वस्तु मानते हैं। ये उससे भी गए दीते हैं, वो एक तो छोड़ा किंतु दूसरा चीज कोई उन्होंने पकड़ा नहीं। शास्त्र कहते हैं क्या करो? शास्त्र कहते हैं उस चीज को जो प्रकृति से अतीत है, जो नित्य है, अनादि है, सबका भी आदि भी है, ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण का भजन किसी ने चीज होता। तो वहां पर दोनों में भेद। उन्होंने कहा कि शास्त्रों पर विचार करते हुए, शास्त्र का प्रमाण देते हुए हमको ये बतलाइए, हम लोगों के लिए साध्य और साधन है। उन्होंने बतलाया संसार धर्म में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान का भजन करना ही हमारे लिए साध्य। साधन क्या हुआ? संसार में रह करके भगवान की का भजन करना, उनका पूजन करना, यही हमारे लिए साधन है और साध्य है। क्या उसके द्वारा जो प्रीति होती है, उससे जो मुक्ति मिल जाती है और संसार में हम सुखी रह सकते हैं, भोगों की प्रचुरता मिलती है, बाल बच्चे मिल जाते हैं, धन मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, यही सब चीजें हमारे लिए साध्य। यदि प्रसन्न हो गए भगवान तो क्या देंगे? हमारा दुख दूर हो जाएगा और जो हम चाहते हैं वो मिल जाएगा। क्या चाहते हैं? संसार में हमको जो कष्ट हो रहा है, पति के द्वारा, पुत्र के द्वारा, भाई के द्वारा, समाज के द्वारा, शरीर के द्वारा, ये सब न दुख दूर। और दुख दूर होगा कैसे? रुपया पैसा, धन जन, पुत्र परिवार और लोग हमको कोई विरोधी नहीं। कितने दिन के लिए होगा? यदि भगवान प्रसन्न होकर के भी दे दिया तो दूसरे जन्म में क्या होगा? मरना तो पड़ेगा ही। ये शरीर संबंधी सब चीजें हैं। महापुरुष जी ने कहा जी हो बात जागे चलो, इसमें कुछ नहीं है। शरीर के द्वारा साधन करेगा, योग करेगा, योगाभ्यास करेगा, क्या होगा? लंबे लंबी सांस लेगा, रेचक पूरक कुंभक करेगा, सांस रोकेगा, सांस छोड़ेगा, तो क्या होगा? हाथ इधर डुलाएगा, उधर डुलाएगा, तो इससे क्या होगा? शरीर जरा होगा का इससे शरीर, तो फिर कल चट्टी लग जाएगी, दो तीन चट्टी हो जाएगी शरीर, और फिर योग होगा क्या? इसलिए योग तपस्या ये सब मत करो, इससे कुछ नहीं, आगे कुछ करिए। तो उन्होंने कहा अच्छा कर्म जो करते हो करो, किंतु प्रभु को अर्पण करो। अब एक प्रभु आए भगवान जिसके स्थिति के लिए वो किया था, इससे क्या होगा? मान लें कि हमने सब कर्म किया और भगवान को अर्पण किया, बाग बगीचा लगाया, लोगों के लिए उपकार किया, यज्ञ किया, तपस्या किया, तो इसे लोग उपकार मेरा क्या होगा? तुमको मुक्ति मिल जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा पहले, और चित्त शुद्ध होने से कामनाएं वासनाएं दूर हो जाएगी। एक आदमी अभी मान लिया किसी से लड़ाई किया, मारपीट दंगा की, और आज ही उसकी मृत्यु होगी, तो वो क्या सोचते हुए मरेगा? लड़ाई दंगा, यही तो, इसलिए लड़ाई दंगा ही मत करो। किसी चीज में आसक्त होकर के मरेगा तो उसी की चिंता करो, ये समझ। इसलिए जो कुछ करते हो भगवान को अर्पण करो, ये बात तो ठीक है, किंतु इससे अधिक से अधिक तुम्हारा चित्त निर्मल होकर के और तुम्हारी मुक्ति हो जाए, अधिक से अधिक। और नहीं भूर्व असह महाजन तप सत्य इत्यादि में जाकर के फिर आएगा जाएगा चक्रवाती, क्योंकि शरीर और मन से भी संबंध है, आत्मा से संबंध नहीं है। आगे बढ़िए, तब उन्होंने क्या बतलाया? तो धर्म को त्याग कर दो। शरीर संबंधी जितने प्रकार के धर्म हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्ञमाम एकम सर्व, अपनी विद्या बुद्धि बल बुद्धि छोड़ दो और हमारे शरणागत हो जाओ। तो यदि मैंने धर्म अधर्म सब छोड़ दिया तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? पशु होऊंगा कि नहीं? हमारे शरण में आ जाओ तो मतलब क्या? इसमें एक उद्देश्य छिपा है। धर्म अधर्म जो बातें लिखी गई है उसको हमने तो छोड़ दिया, और फिर रहा क्या? तब कहते हैं कि हमारे शरण में आ जाओ। हमारे शरण में आने से मैं जो कहता हूं या कहा है उसको पालू, इसमें छिपा हुआ है। क्या करो? ये वेद शास्त्र उपनिषद क्या है? हमारे आदेश, जीवों के कल्याण के लिए हमने उसमें जो बतलाया है उसको तुम पालन करो। इससे क्या हो? देखो, तुमको जो पाप लगेंगे धर्मों को छोड़ने से, उसे मैं तुमको संसार में रहते हुए बहुत से पाप करते हैं, इन सब से तुमको दूर कर दूँ। किसको दूर कर देंगे? अर्जुन कौन है? ये ऊपर वाला। तुम्हारा तो शरीर का, शरीर से हमारा क्या संबंध है? इसलिए ये प्रभु की कृपा नहीं थी। और आगे चलिए, सब ज्ञान मिश्रा भक्ति। ज्ञान मिश्रा भक्ति क्या बतलाया? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा सोचति न कांक्षति समसर्वे भूतेषु मद्भक्तिं लभते। देखो, जो ब्रह्मभूत व्यक्ति होता है, ब्रह्मज्ञ होता है, न सोचति न कांक्षति, वो जानता है कि आत्मा मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कर्म के फल से हमको शरीर मिला है किंतु मैं इसे अलग हूँ। इसलिए संसार की कोई भी चीज हम आकांक्षा करेंगे वो दुखदायी होगी, मत आकांक्षा करो। तो जो आकांक्षा कुछ भी नहीं करता है संसार की और न शोक करता है, वो चीजें नष्ट हो जाने पर शोक भी नहीं करता है, और समस्त प्राणियों में समभाव, कोई शत्रु नहीं कोई मित्र नहीं, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। अभी खूब गर्मी पड़ रही है, हाय हाय मरा, और जरा भीगता हुआ ना बसंत ऋतु, वाह वाह क्या सुखद ऋतु है, और इसके बाद में थी खूब ठंडाई, मरा मरा मरा। इसमें सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, ये संसार का क्या है? ये इंद्रजाल है। इंद्रजाल माने क्या? नहीं है इस तरह से कि तुम उसी में दुख में फटफटा रहे हो, सुख में बड़े आनंदित हो रहे हो। उसी के लिए भगवान के पास, भक्तों के पास में जाना चाहिए, तो क्या मांगना चाहिए? कहाँ उनका प्रेम, उनका दर्शन, और कहाँ हम यही संसार की चीजों को मांगते हैं। साधु नहीं देना चाहता तो भी वो चाहते हैं कि नहीं हमको इसी को दे दिए, इसी से प्रसन्न है, जोर जबरदस्ती मांगे, इसलिए कहते हैं कि इसमें सुख शांति नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा सब समय प्रसन्न रहता है, न सोचती, शोक नहीं करता। इसलिए कोई भी संसारिक चीज नष्ट हो जाए, कोई मर जाए, कोई जन्म ले लिया, कोई भी धन संपत्ति बाग बगीचे यहाँ की संसार का भी प्रलय हो गया, क्या प्रलय हुआ, जो न था वो नहीं दिखता, जो है उसका प्रलय तो होता नहीं, आत्मा का प्रलय होता नहीं, चिन्मय वस्तुओं का प्रलय होता नहीं, तो हुआ क्या प्रलय। एक आदमी मर गया, क्या मर गया, क्या मर गया, बिलबिलाएंगे सभी यहाँ पर जितने सुने वो भी बिलबिलाएंगे, किंतु मर क्या गया, आत्मा मर गई ना शरीर मर गया, तो शरीर मर गया, शरीर मर गया तो जीवित कब था शरीर, जो मर गया तो मरा ही हुआ तो है, क्या मर गया, केवल बुद्धि मर गई, बुद्धि बुद्धि से ऐसा सोचते हैं ये मर गया, ये चीज हो गया, क्या हो गया, अरे आत्मा जिसने ये शरीर मिला था उसको करो ठीक, इसलिए ऐसा समझ लिया है जिन लोगों ने, इसको मरा ही हुआ समझ लिया है, इसके लिए मरे हुए को यदि मान लिया कि अमृत का घड़ा भी ला दे तो क्या है, बेकार का, इसलिए इसके लिए प्रचेष्टा करने की जरूरत नहीं है। न सोचती तो न कांक्षती, मृग तृष्णा के लिए मृग को प्यास लगी है और गर्मी में अभी लू चल रही हो और उसका हवा ऐसे ऐसे टलमल कर रही है, दूर से देखा ये पानी का तरंग है, तो हम कहेंगे जो है प्रभु हमको वो पानी का तरंग मिला दीजिए। वही ब्रह्मज्ञानी जो है ये संसार सुखों को क्या समझता है, कृष्ण का जो जल तरंग है ठीक आता, इसमें जाएंगे तो फंसेंगे, मृगा किरण किरणी उस हवा के तरंग को पानी समझ करके आगे बढ़ते हैं, प्यास लगी हुई है पानी बुझाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए थोड़ी देर से जा सकते हैं और आगे और आगे और आगे बढ़ता जाता है और रेती में जो गर्म साफ से जलता है बस उसी में जा करके जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं बस लुढ़क जाते हैं, बस मर जाते मर गए, ऐसा ये संसार है, ये सुख होगा ऐसे सुख ऐसे सुख होगा, अंत में कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर थी रावण और प्रहलाद जी का पिता हिरण्यकश्यप, कंस, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन इत्यादि, ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हम वहीं पर पहुँचे, इसलिए सुख नहीं कर। समस्त सर्वेश भूतेषु, समस्त प्राणियों में भूतों में समझ, इसको खोजना चाहिए, माँ प्रभु ने चाहिए हो बात जागे बेकार की बात, कितना सुंदर बात शास्त्रों में ये बातें लिखी है, गीता का श्लोक और महाप्रभु जी कह रहे हैं यही हो बात बेकार की बात, आगे को कहो जिसमें कि हमारा कल्याण हो, आत्म कल्याण, देखो इसमें भी कल्याण नहीं, लोग समझते हैं उन लोगों के लिए कुछ ऊपर स्टेज पर है जो अत्यंत संसार में घोर आसक्त हैं, इसी के लिए लड़ते मरते हैं दमड़ी चमड़ी के लिए, उन लोगों के लिए कुछ ऊपर की बात, किंतु इसमें भी लाभ नहीं है। और आगे बढ़ो, ज्ञाने प्रयास समुदपन्न मन तयव निबन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां भगवान जगत में अधिक है, उनको दर्शन भी नहीं होता, कोई उनको जीत नहीं सकता, वशीभूत नहीं कर सकता, किंतु जो व्यक्ति ज्ञान के प्रयास को अभी जो पहले बतलाया गया इसको भी छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, तनिक भी उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तत्व ज्ञान के लिए, ये सब जड़ विज्ञान की तो बात नहीं किया, तत्व ज्ञान कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, इनको भी छोड़ देते हैं, आत्मा है या अनात्मा है, छोड़ो इस बात को, क्या करो वो अपने आप आ जाएगा। पहले खाओ तो, खाओ तो क्या होगा, रसगुल्ले ले आओ और महान भोग ले आओ, खीर ले आओ, खाओ देखो तो खाते ही भूख अपने आप चली जाएगी, तृप्ति भी हो जाएगी, शरीर में बल भी आ जाएगा। इसलिए भक्ति भगवान का, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, इसके श्रवण करने से तत्व ज्ञान अपने आप आ जाएगा, संसार से वैराग्य भी आ जाएगा, मुक्ति चरणों में लौटेगी और साथ साथ में जो भगवान जो अजित हैं वो भी सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि किसी किसी को दूध में घी नहीं दिखाई देता, दूध को थोड़ा सा उबाल लो अच्छी तरह से, कभी कभी देखा जाता है उसके कण ऊपर आ जाते हैं और झिलमिल झिलमिल करते हैं। विशेष करके जब इसका मंथन कर दिया जाए, पानी डाल दिया है मंथन करके, तो क्या होगा, मट्ठा अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। मक्खन को जरा तरल कर दो भी, देखो कैसा एकदम तरल हो जाएगा, सब मैल दूर हो जाएगा। ऐसे ही कण कण में प्रभु हैं, कहाँ नहीं है, किंतु वो दिखेगा कैसे, हरि कथा के माध्यम से। तब फिर उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा आगे चलिए, इसमें भी कहा जाए आगे चलो। तब उन्होंने कहा यदि भूख लगी है तो खाने में रसा स्वाद है, और भूख नहीं लगी है तो सरस व्यंजन भी कुछ काम का नहीं। एक लड़के का पेट खराब है और भूख नहीं लगी, उसको सरस भोजन दे दो क्या करेगा। कुछ बच्चे हैं ना यहाँ आते हैं, उनको प्रसाद देता हूँ तो जल्दी से ले देते हैं और देखते हैं कि ये कब महाराज प्रसाद दे। पेड़ा पर विशेष नजर, जहाँ पेड़ा दिया बस लेकर के एक सेकंड में नहीं बात मुख में दे दी। और कुछ बच्चों को देखे हैं तो वो प्रसाद दे रहे हैं, आ जाओ ले लो, तो इधर देख रहा है उधर देख रहा है, क्यों इसलिए, इसलिए भूखा प्यासा नहीं है तो उसमें रसा स्वादन नहीं है। इसलिए भूख जिसको है, हरि कथा की लालसा जिनमें है भूख है, भगवान की सेवा की जिसमें भूख है, उस व्यक्ति में भूख होने से उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए भगवान को भूख लग जाएगी, तो भगवान को भी वो अच्छी लगेगी। ये तात्पर्य आया समझ में नहीं है, समझो। मान लिया हमारा कोई व्यक्ति आया मिलने के लिए, हमारे कोई प्रिय व्यक्ति आए, मित्र आए, सखा आए, वो आया, हमको तो भूख नहीं है, उनको भूख है, तो खिलाओ तो उनको आनंद होगा ना। और यदि उनको भूख नहीं और हम ही का भूख है तो उनको क्या लाभ, तो भगवान को तो मित्र समझो। और मेरे घर पर पधारे और मुझको भूख है उनको भूख नहीं, तो उनको देने से उनको भूख लगेगी, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, उनको तो भूख नहीं। उदाहरण में ये बतला रहे हैं, यदि हमको जो साधक है प्रेम की भूख है तो साधारण पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपहृतम स्नामी प्रियता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम के साथ में भावना के सहित में भगवान को पत्रम एक पत्ता भी दे दिया, पुष्पम पुष्प भी दे दिया, फलम तोयम कुछ नहीं है जल दे दिया, तभी ये प्रेम से दिए हुए चीज को ग्रहण कर। जैसे सबरी है वो उनकी गुरानी भी हैं, इनके दिए हुए चीज को बड़े प्रेम के साथ में आऊंगा, और हमारे अंदर में प्रेम नहीं है तो वो नहीं लेंगे। हमको देख करके ये प्रेम से दे रहा है, भगवान को भूख लग जाती है, उनको भूख नहीं लगते लेकिन तो लोग जाएंगे। यशोदा का स्नेह देख करके उनके पुत्र बन जाते हैं, इसी तरह से। इसलिए प्रेम पूर्वक की हुई सेवा को भगवान ग्रहण करते हैं, प्रेम से किए हुए चिंतन को प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, प्रेम से किए हुए कीर्तन को सुन लेते हैं, नहीं तो नहीं सुनेंगे। कीर्तन तुम हजार एक भारत वर्ष के इन्हें जिन्हें चुने, दिल्ली में कौन एक मंगला नाचा गायिका है अभी है मंगल मंगला हाँ मंगेश ना अच्छा लता मंगेशकर या क्या सुनते हैं, हमने कभी सुना नहीं है कभी पेपरों में। तो वैसे ऐसे लाख लोग मिल जाए हारमोनियम तबला एसराज सब साज ले करके और बॉम्बे के सब कलाकार भी मिल करके एक साथ में पांच गाते हैं श्रीले कंठ से रियाज करें तो प्रभु सुन लेंगे कि नहीं। और एक मोटे गले का कोई व्यक्ति हो आंखों से आंसू झर रहे हों और बड़े प्रेम से उनको पुकारते हुए गोविंद दामोदर माधवी उनको पुकारा तो वो सुनेंगे कि नहीं, वो सुन लेंगे। इसलिए प्रेम पूर्वक होना चाहिए। और इस प्रेम को करने के लिए एक बात और बतलाया, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति प्रियतां सुतोपि यदि लभ्यते तत्र मूल्यमेकलं जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। कृष्ण विभावित जो मति है वो संसार में दुर्लभ है।